నమో భగవతే వాసుదేవాయ. శ్రీమద్ భాగవతం సెవెంత్ క్యాంటో సెవెంత్ చాప్టర్ టెక్స్ట్ నెంబర్ 29. తత్రోపాయ సహస్రాణాం అయం భగవతోదితః యదీశ్వరే భగవతి యథాయైరంజసారతిః తత్ర. ఉస్ సంబంధ మే, భవబంధన్ సే చూటనే మే, ఉపాయ విధియో మే, సహస్రాణాం హజారో, అయం యః భగవతా ఉదితః పూర్ణ పురుషోత్తమ భగవాన్ ద్వారా ప్రదత్త, యత్ జో ఈశ్వరే ఈశ్వర మే, భగవతి పూర్ణ పురుషోత్తమ భగవాన్ మే, యథా జిస్ ప్రకార, యైహి జిస్కే ద్వారా, అంజసా తేజీ సే, రతిహి ప్రేమ తథా స్నేహ సే ఆసక్తి. అనువాద తాత్పర్య కృష్ణ కృపామూర్తి శ్రీ ప్రభుపాద్ కే ద్వారా. శ్రీ ప్రభుపాద్ కీ భౌతిక జీవన సే చూటనే కే లియే జితనీ విధ్యా సంస్తుత హై ఉన్మే సే ఉస్ ఏక్ కో జిసే స్వయం పూర్ణ పురుషోత్తమ భగవాన్ నే బతాయా హై ఔర్ స్వీకార్ కియా హై సభీ తరహ సే పూర్ణ సమజనా చాహియే. వహ విధి హై కర్తవ్య కా సంపన్న కియా జానా జిస్సే పరమేశ్వర్ కే ప్రతి ప్రేమ వికసిత్ హోతా హై. తాత్పర్య ఉన్ అనేక యోగ విధియో మే సే జో మనుష్య కో భవ కల్మష్ के बंधन से ऊपर उठाती है उस एक विधि को जिसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने संस्तुत किया है सर्वश्रेष्ठ समझना चाहिए. यह विधि भगवद्गीता में स्पष्टतः बतलाई गई है जहाँ भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, सारे धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण ग्रहण करो. यह विधि सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि भगवान ఆశ్వస్త కర్తయ హ అహం త్వాం సర్వ పాపేభ్యో మోక్షయిష్యామి మా ఆశిషః, మే తుమ్హే సారే పాపో సే ముక్త కర్ దూంగా, తుమ్ డరో మత్, చింతా కర్నే కి కోయి బాత్ నహీ హై, క్యోంకి స్వయం భగవాన్ ఆశ్వస్త కర్ రహే హై కి వే అప్నే భక్త కి రక్వాలి కరేంగే ఔర్ ఉసే పాప కర్మో కే ఫలో సే బచా లేంగే. భవ బంధన్ పాప కర్మో కా హీ ఫల హై, इसलिए चूंकि भगवान आश्वस्त कर रहे हैं कि वे सकाम कर्मों के फलों को दूर कर देंगे, अतएव चिंता करने की कोई बात नहीं है. इसीलिए आत्मा के रूप में अपनी स्थिति को समझने तथा अपने को भक्ति में लगाने की विधि सर्वोत्तम है. संपूर्ण वैदिक कार्यक्रम इसी सिद्धांत पर टिका है और मनुष्य इसे वेदों में संस्तुत की गई విధి సే సమజ్ సక్తా హై. యస్య దేవే పరా భక్తిర్ యథా దేవే తథా గురౌ తస్యైతే కథితా హ్యర్థాః ప్రకాశంతే మహాత్మనః. జో మహాపురుష్ భగవాన్ తథా గురు దోనో పర్ గూఢ శ్రద్ధ రఖతే హై ఉన్హే వైదిక జ్ఞాన్ కా సారా ఆశయ స్వతః ప్రకట్ హో జాతా హై. శ్వేతశ్వేతర ఉపనిషద్. మనుష్య కు చాహియే కి ఈశ్వర్ కే ప్రతినిధి स्वरूप शुद्ध भक्त को अपना गुरु मान ले और उसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के समान ही आदर प्रदान करे. यही सफलता का रहस्य है. जो इस विधि को ग्रहण करता है उसे पूरी विधि ज्ञात हो जाती है. इस श्लोक में यैरंजसारति ही शब्द यह बताते हैं कि गुरु की सेवा करने तथा उसकी शरण ग्रहण करने से मनुष्य को भक्ति प्राप्त होती है और भक्ति करने से वह धीरे धीरे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में आसक्त हो जाता है. भगवान के प्रति इस आसक्ति के कारण वह भगवान को समझ सकता है। दूसरे शब्दों में वह यह समझ सकता है कि भगवान की स्थिति क्या है, हमारी स्थिति क्या है और हमारा संबंध क्या है। भक्ति योग की सरल विधि द्वारा यह सब सरलता से समझा जा सकता है। जो ही मनुष्य भक्ति योग पद को प्राप्त होता है, क्यों ही उसके कष्ट तथा उसके भवबंधन का मूल कारण नष्ट हो जाता है। इसकी स्पष्ट व्याख्या अगले श्लोक में की गई है, जो सफलता के रहस्य को बताता है। हरे कृष्णा। मैं सर्वप्रथम सब वैष्णवों के आशीर्वाद की याचना करते हुए, खास करके हिज होलनेस भक्ति माधुर्य गोविंद स्वामी महाराज और श्रीमान और रुक्मिणी कृष्ण प्रभु और बाकी अन्य बहुत वरिष्ठ भक्त बैठे हैं इधर, मैं सबसे आपकी आशीर्वाद और कृपा की याचना करते हुए मैं भागवत को शुरू करूंगा। मैं इधर आया था आज क्लास देने के लिए नहीं, हमने सोचा कि थोड़े समय बिताएंगे रुक्मिणी कृष्ण प्रभु के साथ, लेकिन प्रभु जी की आदेश थे कि हम भागवत के ऊपर कुछ बताएं, इसलिए मेरा गला आज थोड़ा ठीक नहीं है। अगर बीच में आपको कुछ शब्द समझ में नहीं आ रहा है तो हाथ ऊपर करना, मैं बोल दूंगा वापस, ठीक है। पिछली बार मैं जब आया था प्रभु जी ने हमको एक राधिका राधा राधिका रमन की एक सुंदर तस्वीर दी थी, तो हम अपने कमरे में रोज उनके दर्शन करते हैं। इसलिए जब मैं दिल्ली आया तुरंत इच्छा हुई कि इधर पंजाबी बाग में आकर भगवान के दर्शन करें इधर। हालांकि वो देखने में बहुत छोटे साइज के हैं, लेकिन आकर्षण में सर्वाकर्षक हैं। जिस तरह इस श्लोक में बताया जा रहा है कि अनेक पद्धतियां शास्त्र बताते हैं, शास्त्र तो बहुत बड़े समुद्र के बराबर है, कितने कितने विविध मार्ग बताए गए हैं। कल ही में पढ़ रहा था एक श्लोक है मुचुकुंद स्तुति में, उसके अंत में मुचुकुंद स्तुति होने के बाद भगवान कृष्ण मुचुकुंद को बता रहे हैं, युंजाना नाम अभक्ता नाम प्राणायाम यम आदिवीर नरह अक्षीणम वासनम राजन त्रिश्यते पुनरुत्थितम। वो बताते हैं कृष्णा, देखिए कभी कभी भागवत में एक एक श्लोक इधर उधर रखा गया है, वो एक श्लोक के अंदर इतना महत्वपूर्ण मतलब है, किस पद्धति को हमें चुनना चाहिए। उस श्लोक में बताया गया है युंजानानाम अभक्तानाम, जो अभक्त होते हैं दुर्वासा मुनि जैसे, वो बता रहे हैं कि अक्षीण वासनम राजन, हालांकि वो प्राणायाम करते हैं यम नियम प्राणायाम आसन प्रत्याहार इत्यादि इत्यादि करके अपने मन और इंद्रियों को काबू में लाने के लिए विविध यत्नों को अपनाते हैं, फिर भी बताते हैं अक्षीण वासनम राजन, क्षीण का मतलब है खत्म हो जाना, अक्षीण वासनम राजन बताते हैं भगवान, उनके हृदय में वासनाएं खत्म होते नहीं। जैसे भागवत में और एक उदाहरण है, अगर किसी के पास एक शराब का गड्ढा हो, वो गड्ढा को वो फेंक दिया जाए शराब, उससे उसको पानी से नहलाना, धोने के बाद उसको एक सूखा कपड़ा लेकर उसको सूखा भी देना, ये सब करने के बाद भी ऐसे करो उससे गंध आता है शराब का, उसको वासना बोलते हैं। वासना का मतलब है जैसे एक व्यक्ति कुछ बुरा काम करता है, उसका नतीजा तो निकलने ही वाला है भविष्य में, लेकिन वो नतीजा निकलने के बाद भी वो वापस उसी कुकर्म को करने की प्रवृत्ति होता है व्यक्ति में, पुनः पुनः वही गलत काम करने की प्रवृत्ति होता है, तो ये वासना बोलते हैं इसको। इसलिए बताते हैं युंजाना नाम अभक्ता नाम, जैसे एक ग्लास में पानी हो उसमें बहुत गंदगी हो, ऐसे कुछ समय के लिए रख दीजिए, वो सेटल हो जाता है नीचे। एक स्पून लेकर, चम्मच लेकर ऐसे करिए, वो ऊपर आ जाता है। ऐसे ही हुआ था विश्वामित्र को, ऐसे ही हुआ था सौबरी मुनि को, ऐसे अनेक ऋषियों मुनियों के बारे में हम सुनते हैं। पुनः पुनरुत्थितम दृश्यते पुनरुत्थितम, कृष्ण बताते हैं कि वो वासनाएं वापस उठ जाते हैं, ऐसे बताते हैं। तो इस तरह जैसे विश्वामित्र के जीवन में हम देखते हैं कि एक बार काम की वासना में आ गए थे, दूसरी बार क्रोध की वासना, क्रोध के वश में आ गए थे, और दोनों बार उनके तपोबलम घटता गया और खत्म हो गया, वापस तपस्या करना पड़ा उनको ऐसे। लेकिन बता रहे हैं कि विविध मार्गों को अभ्यास करना भी कठिन है, करने से भी लाभ ज्यादा नहीं है। अरे करना भी कठिन है, करने के बाद लाभ भी नहीं है, तो क्यों करे, ऐसे कोई पूछ सकता है। जैसे अभी कुछ ही दिनों के पहले हम पढ़ रहे थे ये पतंजलि योग सूत्र के संबंध में, वर्ल्ड रेनाउंड एक टीकेवी अयंगार करके एक महान व्यक्ति है, वो सारे दुनिया में योगा के लिए जगत प्रसिद्ध है। वो श्री वैष्णव संप्रदाय में जन्मा है, लेकिन वो योग पद्धतियों में पद्धतियों को लेकर योगासनाओं को सिखाने में सारे दुनिया में बड़ा निपुण बन गया। अभी उनका उम्र है 95। अभी आप जाकर पुना में रहता है वो, उनका एक बड़ा टीके भी अयंगार इंस्टीट्यूट ऐसे है, आप जाकर देखेंगे अभी भी वो भाग दौड़ कर सकता है, जैसे लगता है कि वो 25 उम्र का वयस का व्यक्ति हो ऐसे है। उसका ऐसे पूरा बॉडी को ट्विस्ट कर सकता है, ऐसे 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 क्या क्या करते हैं लोग, आपने देखा है योग करने वाले ऐसा पूरा बॉल जैसे कर देता हो ऐसे। उनका एक स्वप्न था कि हमारा बेटा जो है उनको हम बड़ा करना चाहिए, बड़ा होकर बहुत बड़ा योगी गुरु बना देना चाहिए। कभी कभी पिताजी सोचता है कि हमारा, हम तो बूढ़ा हो जाएंगे, हम हमारे शरीर नष्ट हो जाएगा, लेकिन हमारा एक जेरॉक्स कॉपी बना कर जाना चाहिए ताकि हम जैसे और एक व्यक्ति दुनिया में रहे, हमारे वंश बढ़े, ऐसे लोग इच्छा करते हैं। लेकिन वो लड़के को कुछ दुर्घटना हो गई जिसके कारण वो घुटनी टूट गया कुछ एक्सीडेंट में, इसके कारण वो उनको बड़ा योगिक टीचर बना नहीं पाया वो। फिर भी उन्होंने बोला, हाल ही में हमने मिला उनको कुछ समय के पहले, कुछ महीने के पहले, वो बता रहे थे कि मैं तो अभी कभी भी मेरा शरीर गुजर सकता है, तो एक किताब लिखना था उनको, कोर ऑफ योगा, ऐसे एक किताब लिखा उन्होंने, कोर ऑफ योगा, बहुत बल की किताब है। उस किताब में वो लिखते हैं कि पतंजलि खुद ही बोलते हैं कि उन्होंने ये अष्टांग योग क्यों दिया है। वो बोल रहे हैं कि ये जीवात्मा के अंदर कंट्रोल करने की आदत है, वो भगवान को शरण जाना नहीं चाहता है। अगर बोलो लोगों को भगवान इधर ही हैं, सर झुक जाओ हैं, भगवान को दंडत प्रणाम करो और पत्रम पुष्प फलम तुम अर्पण करो, नाचो गाओ, बस तुम भगवान के पास लौट जाओगे। लोग बोलेंगे इतना सरल तरीका कैसे हो सकता है प्रभु जी, ऐसे लोग पूछते हैं इतना कैसे सरल हो सकता है। तो उनको लगता है कि और कुछ कठिनाई होना चाहिए, कुछ जटिल होना चाहिए भगवान को प्राप्त करने का मार्ग। तो इसलिए वो बता रहे हैं उनके किताब में कि अष्टांग योग दिया है उन्होंने, उसमें बता रहे हैं कि ये जटिल मार्ग उन लोगों के लिए है जो अपने मन को खुद के प्रयत्न बलबूते पर रखकर वो मन को वश में करना चाहते हैं, उनके लिए दिया गया है। लेकिन उसमें एक ईश्वर प्रणिधानी नाम का एक अंग आता है। ईश्वर प्रणिधानी का मतलब है ईश्वर को शरण जाना। वो भी स्थिति पर एक योगी आता है जब समझ जाता है कि सब चीज उसके वश में नहीं है, बार बार वासनाएं उड़ते जाते हैं, उन वासनाओं को खत्म करने का शक्ति हमारे पास नहीं है, उसको खत्म करने का शक्ति सिर्फ भगवान के पास है, तभी ईश्वर प्रणिधानी ईश्वर के शरण जाएंगे। तो उस किताब के लास्ट पेज में वो बताते हैं कि पतंजलि के सब योगी पद्धतियां देने का एक ही लक्ष्य है कि एक अष्टांग योगी को भक्ति में जोड़ना। कोई पूछेगा अरे पहले बोल देते तो कितना अच्छा होता, इतना हम मुश्किल वगैरह नहीं करते थे। अरे पहले बोलने से भी लोग समझते नहीं है ना, इसलिए पूरा इस तरह बोलकर अंत में वो समझ आते हैं कि ईश्वर प्रणिधानी वही श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है, ऐसे बताते हैं उस किताब में। तो इस तरह कर्मयोगी क्या करता है, प्रयास करता है, ज्ञान योगी ध्यान करता है, जैसे ज्ञान योगी करता है अभ्यास, अष्टांग योगी करता है ध्यान, भक्ति योगी क्या करता है अनायास बोला गया, बहुत अनायास बहुत आसानी से वो भगवान को प्राप्त कर देता है। लेकिन सिर्फ भक्त को ये सर्वधर्मान परित्यज मामेकं शरणं व्रज, भगवान को कैसे खुश करना आनंदित करना ये सीखना चाहिए भक्त को। तो प्रभुपाद जी बताया करते थे भगवद गीता का लक्ष्य क्या है, आप किसी भी बहुत पढ़े लिखे स्कॉलर को पूछो वो बोलेगा अनासक्ति। देखिए सुख दुख में समता चाहिए, मान अपमान में समता चाहिए, यही भगवद गीता का सारांश है। ऐसे बोलने वाले अनेक लोग हैं भारत में, लेकिन प्रभुपाद जी बोल रहे हैं ये भगवद गीता का सारांश नहीं है। भगवद गीता सिखाता है कैसे आसक्ति सीखना, किससे, भगवान से। सब लोग दोहराइए, मैया सक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रय असंशयम समग्रम यदा ज्ञासी तच्छृणु। इस श्लोक में सातवें अध्याय के पहले श्लोक है, ये भगवान बता रहे हैं कृष्ण, हे अर्जुन तुम सुनो कैसे मेरे ऊपर तुम आसक्ति बढ़ा सकते हो मैं बताऊंगा। इस तरह गीता में ही खुद भगवान बताते हैं कि अगर तुम मेरे ऊपर आसक्ति बढ़ा लोगे तो तुम्हें खुद कुछ 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 बड़ा प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा तुमको। जैसे आठवें अध्याय में आप सुनेंगे भगवान बता रहे हैं कि उत्तरायण में शरीर छोड़ना चाहिए, दक्षिणायण में नहीं, दिन में छोड़ना चाहिए, रात में नहीं, रात को कोई मरेगा तो वापस आज लौट जाएगा इस दुनिया में, आवागमन हो जाएगा उसका जन्म मृत्यु का, अगर दिन में कोई छोड़ेगा नो प्रॉब्लम, इस तरह अगर उत्तरायण में छोड़ेगा तो अच्छा है, दक्षिणायण में छोड़ेगा तो वापस लौटना पड़ेगा, इतने लोग मरते भी हैं दक्षिणायण में, है ना, होता है इसे दूसरे साल के दूसरे पक्ष में। इस तरह शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष इन चीजों के बारे में कृष्ण बताते हैं। कोई भी सुनेगा उस अध्याय भगवान को प्रार्थना करेगा, हे भगवान ये सब कंडीशन हम कैसे हम पूर्ति करेंगे, हमारी मृत्यु कब आएगा हमारे हाथ में नहीं है, रात को अगर मृत्यु आने वाला है तो मृत्यु को बोल सकते हैं थोड़ा वेट करो सुबह आओ, उसको रोक नहीं पाएंगे हम। तो उस अध्याय के अंत में भगवान बता रहे हैं कृष्ण अर्जुन को, हे अर्जुन ये सब शर्तों को सुनकर तुम डर मत जाओ, ये तुम्हारे लिए नहीं है, तुम जैसे भक्तों के लिए नहीं है, किसके लिए है, योगियों के लिए है, तुम तो मेरे भक्त हो, भक्तों के लिए कुछ भी शर्त नहीं है। भक्त लोग सिर्फ एक ही काम करते हैं जो इस अध्याय इस तात्पर्य में बताया गया है, क्या है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, उनके बारे में भगवान बताते हैं आठवें अध्याय के लास्ट में। इस तरह वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टं अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगिं परं स्थानोपैति चाद्यं। भगवान बताते हैं वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु दानेषु इन चीजों से मिलने वाला सब पुण्य मेरे भक्त को ऑटोमेटिक मिल जाता है क्योंकि वो मेरे शरण में है, ऐसे बताते हैं। ये कैसे है, कभी कभी आप देखते हो कंपनी में तो लेत में काम करते हैं, कितना कठोर परिश्रम करते हैं वो लोग, है ना, मिलिंग मशीन में, ड्रिलिंग मशीन में, स्मृति आग के निकट काम करते हैं, इतना कठोर परिश्रम करने के बाद भी उनको महीने में 4-5 हज़ार मिलता है उन लोगों को, लेकिन सुपरवाइजर जो है वो ऐसे ऐसे जाकर देखता कौन क्या काम करता है, वो खुद नहीं करता कुछ काम, लेकिन उसको 10-12 हज़ार मिलता है उसको, लेकिन उसके ऊपर बड़ा मैनेजर है वो रूम के बाहर निकलता ही नहीं, वो बैठे बैठे सब 10-12 सुपरवाइजर को बुलाकर क्या करता है, वो नोट कर लेता है किसने क्या किया है, उसको 20-25 हज़ार मिल जाता है अंदर बैठे बैठे। उसके ऊपर MD है, MD भी ऐसे वो अलग अलग ब्रांचेस में घूमता है वो है? उनके तो उसके पास 3-4 मोबाइल रहता है अलग अलग नंबर का, तो वो भी बहुत परिश्रम करता है लेकिन बहुत चिंता रखता है, खुद काम नहीं करता लेकिन चिंता ज्यादा है उसका, है कि नहीं। लेकिन ओनर जो है वो 12 बजे आता है और 2 बजे चला जाता है और 2 घंटे में क्या करता है, पैसा गिनने के लिए आता है, बस गिनने का, पॉकेट में डालने का, चले जाने का, है कि नहीं। लेकिन ओनर की बीबी धर्मपत्नी जो है वो कंपनी भी जाते नहीं उसको कंपनी का नाम भी कभी मालूम नहीं है, लेकिन एक चीज जानती है, अपने पति को कैसे खुश करना। पति खुश है इसलिए क्या करते हैं, वो ना इतना पैसा गिनकर लेके आते हैं, सब बीबी के पास दे देते हैं। तो इसलिए कर्मयोगी लेत में काम करने के वाले उनके बराबर है, ज्ञान योगी मैनेजर जैसा है, अष्टांग योगी MD जैसा है, और उनके धर्म पत्नी कौन है, भक्ता है। क्योंकि भक्त भगवान के पत्नी के बराबर क्यों, भगवान का एक नाम है सातवताम पति बोलते हैं ना, सातवताम पति, सब भक्तों के पति हैं भगवान। पतिम पति नाम परमम परस्तात, ऐसे श्रुति मंत्र में बताया गया है। तमेश्वराणाम परमम महेश्वरम, तम दैवतानाम परमं च दैवतम, पतिम पतीनाम परमं परस्तात, विदाम देवं भुवनेश्वमेद्यं, यस्मात् परं नापरमस्ति किंचित। इस विषय के ऊपर श्रद्धा होता है भक्त को, यस्मात् परं नापरमस्ति किंचित, भगवान के ऊपर दूसरा कुछ सत्य नहीं है। यस्मान् नाण्यो नो जो अस्ति किंचित दृष्टि वृक्ष इव स्तब्धो दिविदिष्टत्येकस्तेनेदं पूर्णं पुरुषेण सर्वं। यह भी श्रुति मंत्र है, बताया कि भगवान ऐसे व्यक्ति हैं, वृक्ष एक स्तर में एक स्थान में खड़ा है लेकिन उसका मूल फैलता है। इस तरह भगवान खड़े हैं गोलोक निवसति अखिलात्म भूतो, उनके शक्तियां काम करती हैं दुनिया में, जैसे अंतरंग शक्ति बहिरंग शक्ति तटस्थ शक्ति ऐसे। तो भक्त वो व्यक्ति है जिसके हृदय में एक निष्ठा एक श्रद्धा जागृत हो गया कि भगवान ही एकमात्र आश्रय है। जैसे अभी हम कुछ समय के पहले पढ़ रहे थे, रुक्मिणी एक श्लोक बोलती है कृष्ण के लिए जो लेटर लिखती है उसमें, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतांते निर्विश्य कर्ण विवर हर तोंगतापम रूपम दृशाम दृशिमताम अखिलार्थलाभम त्वय्यच्युता विशति चित्तम अपत्रपम मे। वो बोलती है कि हे भगवान, श्रुत्वा गुणान, मैंने सिर्फ आपके बारे में सुना है, अभी तक हमने देखा नहीं है आपको। नारद मुनि और ऐसे अनेक ऋषि मुनि आया करते थे भीष्मक के महल में उधर कौंडिन्यपुर में, तो हमने आपके बारे में सुना, इस दुनिया में कोई भी कन्या एक ऐसे पति के साथ शादी करना चाहेगी जो धनवान हो पहले, आजकल धनवान देखते हैं लोग, पॉकेट कितना बड़ा है लोग देखते हैं, क्या अच्छा बंगलो है, कार है, नौकरी अच्छा है, आजकल बोलते हैं मिनिमम 8 लाख पर एनम, 10 लाख पर एनम ऐसे बोलते हैं। तो कोई भी स्त्री सोचेगी कि क्या ये संभाल पाएगा हमको, अगर खुद ही नौकरी नहीं है तो कैसे हमको संभालेगा, है ना, पहले वो देखते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति धनवान हो इस दुनिया में, अगर गुणवान नहीं हो, क्या उस व्यक्ति को शादी कर सकती है कोई स्त्री, उसके अंदर अच्छे गुण भी होना चाहिए, है ना। कभी कोई धनवान भी है गुणवान भी है लेकिन उसके पास खूबसूरती नहीं है, वो सुंदर नहीं है। तो हर एक व्यक्ति सोचता है कि पति हो पत्नी हो जिस जो शादी करने वाले हैं, वो सोचते हैं कि सुंदर भी हो। इस दुनिया में देखा जाता है कि कोई बहुत खूबसूरत है लेकिन पॉकेट में धन नहीं है, कोई बहुत धनवान है नहीं तो गुण नहीं है, कोई बहुत गुणवान है। जैसे हम कॉलेज में पढ़ते थे, एक लड़का था हमारे क्लास में, पूरा उसके चेहरे में पिंपल्स होते थे, उसके बाल जो हमेशा ऐसे ऐसे खड़े रहते थे, उसको ऐसा करने से ऐसे आ जाता था ऐसे, है? ऐसे तो उसके शरीर ऐसे हाथी जैसे ऐसे ऐसे चलता था। उसको देखो कोई बोलेगा नहीं कि बुद्धिमान है, लेकिन वो क्लास में फर्स्ट रैंक सेकंड रैंक मिलता था उसको, है? क्योंकि बाहरी दृष्टि से दिखाई इस दुनिया में समझना कठिन है, कौन बुद्धिमान है कौन बुद्धू है, कठिन है। कोई कोई दूसरा दिखता है कि एकदम टिप टॉप हीरो जैसे दिखता है, लेकिन मुंह खोलेगा तो पता चल जाएगा कि कुछ अकल नहीं है, कुछ कुछ समझावट नहीं है, कुछ भी ब्ला 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 बोलता है इसे, है? तो इस तरह वो रुक्मिणी बोलते हैं कि हे भगवान, आप धनवान भी हो, आप गुणवान भी हो, आप खूबसूरत भी हो, सुंदर भी हो, क्योंकि भगवान कृष्ण के बारे में बता रही है कि श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर भुवनेश सुंदर भुवनानाम सुंदर, भुवनेश्वर का मतलब है सारे ब्रह्मांड में कोई भगवान कृष्ण से सुंदर नहीं है। क्यों? जब मथुरा में प्रवेश किया कृष्ण बलराम, तब सारे मथुरावासी अपने अपने छत के ऊपर चढ़कर ऊपर से मालिश देख रहे थे कृष्ण की सुंदरता। इस तरह कृष्ण एक बार अदिति के कुंडल को वापस लौटाने के लिए उधर इंद्रलोक में गए थे। इतना न्यूज सबके पास पहुंच गया, सब लोग अपने अपने महल को अपने अपने लोकों को छोड़कर देवता आ गए भगवान कृष्ण को देखने के लिए, उनकी सुंदरता को देखने के लिए। इस तरह भगवान कृष्ण जब खड़े थे कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में, दोनों पक्ष के सैनिकों कृष्ण की नेत्रे पिबंतो नयनाभिरामम, ऐसे भागवत में ही बताया गया है। नेत्रे पिबंतो, अपने आंखों को अपने आंखों से कृष्ण की खूबसूरती को पी रहे थे, ऐसे बताया गया। इस तरह सारे ब्रह्मांडों में आपसे सुंदर कोई नहीं है, ऐसे बता रही है। तो भगवान सृष्टिकर्ता ही नहीं है, भगवान इतना ही नहीं कि पालन करता है, कुछ लोग पालन पोषण तो करते ही है, लेकिन भगवान प्रेमास्पद भी है। क्योंकि भगवान कृष्ण की महानता क्या है, सृष्टि करना संहार करना अनेक कृष्ण की शक्तियां कर सकती है, लेकिन कृष्ण जो है प्रेम के आदान प्रदान करने में उनसे बड़े निपुण कोई नहीं है। जैसे ये भूमि का एक प्रार्थना है भागवत के पहले स्कंध में, का वा सहेत विरहम पुरुषोत्तमस्य प्रेमावलोक रुचिरस्मित वल्गुजल्पैहि स्थैर्यं समानमहरन् मधुमानिनीनां रोमोत्सवो मम यदङ्कृविटङ्किताय। ये भूमि बोलते हैं कि हे भगवान, आज तक मैं बहुत शांति और सुख से जी रही थी, जब आप वृंदावन को छोड़कर मथुरा द्वारका जाते थे सब वृंदावन वासी रो पड़े, जब आप द्वारका छोड़कर वृंदावन लौटते थे तो द्वारकावासी रोते थे, लेकिन मैं कभी रोती नहीं थी। क्योंकि भूमि, आप कहीं भी आपके पदकमलों का रखो, मैं तो आपके संपर्क में रहती थी हमेशा, लेकिन अभी भूमि को ही छोड़कर आप अपने धाम स्वधाम लौट रहे हैं, इसलिए अब उनके साथ साथ मैं भी रो रही हूँ, ऐसे बोलते हैं। लेकिन भूमि बोल रही है, हे भगवान, ये बहुत आश्चर्य की बात है, आपके प्रेम अवलोक से, आपके मुस्का मंद मुस्कान से, आपके मधुर वचन से, ऐसे रानिया जैसे सत्यभामा, जैसे रान जो कोप के लिए बहुत प्रसिद्ध है, मान के लिए प्रसिद्ध है, उनको भी आपने काबू में रखा, ये आपका शक्ति है। ऐसे कोई रानी नहीं है, कोई इस दुनिया में नहीं है जिनको आप वश में नहीं कर सकते हो, सबका आप वश में कर सकते हो। इसका कारण क्या है? आप खुद ही आपके आपके भक्तों के वश में आकर उनके हृदय को आप चोरी कर लेते हो। भगवान का एक नाम है चित्त चोर। ऐसे हमने सुना, ऐसे वृंदावन में जब कृष्ण बालक कृष्ण एक बार यशोदा वापस लौटी, कृष्ण को पूछा कि ये क्या, इसमें ये बड़ा गड्ढे में जो माखन था ऊपर, नीचे दूध रहता है ऊपर माखन रहता है ना, माखन था ऊपर, उसमें आधा ही था माखन। तो कृष्ण को पूछा उन्होंने, क्या आधा ही पड़ा है, क्या हो गया कृष्ण? वो बोले कि मैया, पहले जो इसके ऊपर ढक्कन था ना, उसको मैंने निकाला। ऐसे कृष्ण बोले, ढक्कन था, ढक्कन तो मैं रखी नहीं, ढक्कन ऊपर कुछ ढक्कन नहीं था, ऐसे बोल रहे थे वो। तो क्योंकि झूठ बोलने बोलते समय भी सावधानी से झूठ बोलना चाहिए, है ना? तो कृष्ण को आश्चर्य हुआ, अच्छा ढक्कन नहीं था क्या? नहीं नहीं मैया, आपने ढक्कन रखा था लेकिन आप भूल गई, ऐसे बोले वो। यशोदा मैया बोले कि ठीक है छोड़ दो, अभी बोलो माखन क्यों आधा हो गया? तो बोले, देखिए मैया, इसमें कुछ तो काला गिर गया था, इसलिए मैंने उसको थोड़ा निकाल कर डाला वो माखन को। तो मैया बोला कि लेकिन इधर क्या है माखन, तुम्हारे वोंट के पास माखन है। मैया, जब मैं माखन का काला चीज को जो निकल रहा था ना, तभी अचानक एक मच्छर आकर बैठ गया इधर, वो मच्छर को निकालने के लिए हाथ रखा ना, इसलिए इधर आ गया ऐसे। तो मैया ने सोचा, कितना बड़ा ये धोखेबाजी करने में वो लीडर है कृष्ण। तो इस तरह कृष्ण क्या करते हैं, अपने भक्तों के हृदय को वो चोरी करते हैं अपने सुंदरता से। इस तरह ये बता रहे हैं कि श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते, मैं आपको आपके बारे में सुन सुनकर मेरे हृदय में आप प्रविष्ट हो गए हैं, निर्विश्य कर्ण विवराय हरतोंग तापम, आप अपने हृदय को, मेरे हृदय के सब तरह के तापों को आपने चोरी कर लिया उसको भी। देखिए, दुनिया में किसी को भी पूछो, सब लोग तंग आ चुके हैं विविध यातनाओं से, लोग बोलते हैं ये समस्या है वो समस्या है, इसे लोग बताते हैं, लेकिन कृष्ण के भक्ति किसी व्यक्ति के हृदय में प्रवेश करता है, उसके सब तरह के ताप खत्म हो जाएंगे उसके। इसका ये बता रही है ऐसे, और बता रही है कि रूपम आंख वालों को इस दुनिया में आंखों का परिपूर्णता है कृष्ण को देखना, ऐसे बता दिया। रूपम दृशां दृश्यमताम अखिलार्थ लाभम त्वयि अच्युता विशति चित्तम अपत्रपम में। तो कृष्ण को प्राप्त करने का मतलब यह नहीं है कि हम कुछ लोगों का सोचना ऐसे होता है कि हमारा मृत्यु होने के बाद ऐसे आत्मा करके उड़ेगा ऊपर, तो भगवत धाम के पास हम निकट चले जाएंगे, वो दरवाजे में कृष्ण के पास चाबी है अंदर जाने के लिए, है वो कॉल कर हमको छोड़ देंगे, हम अंदर जाएंगे, उसके बाद एक इसी चरण में रिलैक्स करेंगे, है आराम करेंगे, लोग सोचते हैं। लेकिन कृष्ण को पहुंचने का तरीका भागवत में बताया है, सुन सुनकर ये एक भक्त के आंखों में कृष्ण आ जाते हैं, और जब आंखों में भगवान प्राप्त हो जाते हैं, जब हृदय में प्राप्त होते हैं, आंखों में प्राप्त होते हैं, और हाथों में भी बाहुओं में प्राप्त हो जाते हैं कृष्ण ऐसे। लेकिन ये सुनने के आदत में भी श्रद्धा के साथ सुनना, इसलिए भागवत में अक्सर आप देखेंगे श्रद्धान्वित अनुसरणीयात अथ वर्णीय त्यः, ऐसे भागवत में बताया गया है। तो ये भक्ति मार्ग क्या है, बहुत सरल है। भक्ति मार्ग में अनुकूल्यन कृष्ण अनुशीलन भक्तिरुत्तम, हमारे अंगों को इस्तेमाल करके काया वाचा मनसा, इससे भगवान की सेवा करना चाहिए। जैसे हम शिव विग्रह की आराधना करते हैं, भगवान को सजाना, भगवान को पूजा करना, भगवान को आरती करना, इस तरह करने से भगवान के रूप जो है सुंदर रूप हमारे चित्र में प्रवेश करता है। जैसे माताएं अपने बच्चे को विविध तरह के ड्रेस पहना कर वो सजा कर देखते हैं, कभी कभी फ्रॉक पहनाते हैं, कभी कभी सलवार कमीज पहनाते हैं, कभी वेस्टर्न ड्रेस पहनाते हैं, ईस्टर्न ड्रेस पहनाते हैं, देखा ना आपने, इस तरह हेयरस्टाइल में कभी ऐसे जटा बनाते हैं, कभी पकड़ ऐसे रबर बैंड डाल देते हैं ऊपर, अलग अलग ड्रेस पहनाकर वो क्या करते हैं, अपने बच्चे को फोटो निकाल कर एल्बम बनाते हैं और अपने फ्रेंड्स को दिखाते हैं। तो इस तरह करने से उनके मन में आसक्ति बढ़ जाता है बच्चे के लिए। जैसे स्कूल में माता जाती है बच्चे को वापस लौटाने के लिए दोपहर को 2 बजे, तो स्कूल में हजारों बच्चे भाग रहे हैं इधर उधर, लेकिन वो एक बच्चे के लिए देख रही है वो, और वो बच्चा भी देख रहा है कि अनेक माताएं पिता आए हैं, लेकिन एक माता के लिए वो देख रहा है। इस तरह भगवान और भक्त के बीच में भी ऐसा संबंध स्थापित हो जाता है। अगर ये शिव विग्रह की आराधना रेगुलर करता रहता है कोई भक्त, और वो प्रेम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक भगवान की सेवाएं काया वाचा मनसा इनसे कर रहा है कोई व्यक्ति, इस तरह प्रभुपाद जी बताते हैं कि वो ऐसे भगवान के सुंदर चेहरा, उनके सुंदर बदन एक भक्त के चित्त में बस जाता है, इसके कारण मृत्यु के समय भी वो भक्त भगवान को स्मरण कर सकता है, स्मरण करते करते वो शरीर त्यागता है। इसलिए जिस भगवान को स्मरण करते हुए शरीर त्यागा, उस भगवान को आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। तो ये श्रुति शुत्वा गुणान, सुनने में भी एक क्वालिटी चाहिए, ये श्रद्धा पूर्वक भगवान की कथाएं सुनने से। देखिए, ये श्रद्धा पूर्वक सुनने में बाधा क्या आता है, 2 बड़े बाधाएं हैं। एक बाधा है हमारे भौतिक आसक्ति। तो एक वक्त बोल रहा था कि क्या प्रभु जी, इस भौतिक दुनिया के आसक्तियां भी छूटते नहीं और भगवान भी आसानी से पकड़ में आते नहीं, वो भी कठिन है। हम भगवान को पकड़ना चाहते हैं, भौतिक आसक्तियों से छूटना चाहते हैं, दोनों होता नहीं, इसलिए हम बीच वाले को पकड़ते हैं। बीच वाले कौन है, गुरु जी हैं। गुरु जी के पास भगवान भी हैं, वो भौतिक आसक्तियों से छूट भी गए हैं वो, इसलिए उनको पकड़ना चाहिए। यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता हि अर्थाः प्रकाशन्ते महात्मन। इधर बताया गया, इधर ये तात्पर्य में ही प्रपंच बताते हैं, अगर एक शिष्य को भगवान को प्राप्त करना चाहिए, कुछ कुछ लोग सहज्य बन जाते हैं, वो राधा कृष्ण की लीला, चंद्रावली, ललिता, विशाखा इत्यादि की लीला कभी कभी अलग अलग किताबों से पढ़कर भक्तों को बताते हैं, भक्त लोग पूछते हैं प्रभु जी क्या पहुंचे, भक्त दिखते हैं आप है? इतना बड़े बड़े विषयों के बारे में बात करते हैं। तो कभी कभी एक इच्छा होता है कि हम पहुंचे हुए भक्त हैं, इस तरह दूसरों को प्रस्तुत करने की इच्छा होता है, इसलिए कभी कभी नया चीज ढूंढ निकाल कर हम बताना चाहते हैं लोगों को है? लेकिन अष्टकालीय एक भक्त था एक मंदिर में, तो उसके वो तो मंदिर छोड़कर वो ब्रह्मचारी आश्रम छोड़कर वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया वो, लेकिन अलग अलग लोगों का अलग अलग कारण होता है क्यों ब्रह्मचारी आश्रम छोड़कर जाते हैं। कुछ कुछ लोग जाते हैं वासनाओं को वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो आश्रम बदलते हैं, कुछ कुछ लोगों को भौतिक जीवन में इच्छाएं उठ जाते हैं कि हमें बड़ा बिजनेस करना चाहिए, धंधा करना चाहिए, छोड़कर चले जाते हैं। और ये व्यक्ति का अलग ही कारण था, उसके दरवाजे को खोलो कपड़ का अंदर 20-25 किताबें हैं, अष्टकालीय लीला ऐसे तरह तरह के, कृष्ण भावनामृतम ऐसे ऐसे बड़े बड़े मोटे मोटे किताबें हैं। वो प्रभुपाद की भागवत अभी तक पूरा नहीं किया वो है? वो बड़ा बड़ा किताब इकट्ठा किया है वृंदावन से। अगर उसने किताबों को पढ़ा, भक्ति जागृत हुई, तो वो भक्ति छोड़कर क्यों जा रहा है वो है? क्योंकि इन किताबों को पढ़ने के बाद भी उसके अंदर सहज भावना ही आया, वो भक्ति में आगे बढ़ नहीं पाया। तो इसलिए एक बार हमने मिला इस कदमकानंद महाराज से वृंदावन में, तो मैंने महाराज को पूछा कि महाराज जी इतने किताबें हैं हमारे इस्कॉन में, नए नए किताब निकलते हैं जा रहे हैं, हम कैसे एक बैलेंस रखे प्रभुपाद किताबों को पढ़ने में और नए किताबों को पढ़ने में, क्या कर किया जाए? तो वो बता रहे थे कि देखो ये भगवत गीता, भागवत, चैतन्य चरितामृत, ये तीन किताब जो हैं वो राइस दाल सब्जी चपाती के बराबर है, और बाकी सब किताबें चटनी के बराबर है। अभी तुम सोच लो कितना चटनी लेने का, ऐसे बोले। इसलिए हम प्रभुपाद के दिए हुए किताबों को पढ़कर, सही ढंग से पढ़कर, फाउंडेशन में बुनियाद जो है, बुनियाद क्या है, मैं कौन हूँ, कृष्ण कौन है, हमारा संबंध क्या है, कृष्ण और माया के बीच में क्या संबंध है, माया और जीव के बीच में क्या संबंध है, जीव और कृष्ण के बीच में क्या संबंध है, संबंध ज्ञान, और कैसे इंद्रिय तर्पण जो है बड़ा जहरीला है, खतरनाक है, कैसे हमें उससे ऊपर उठना चाहिए, इन विषयों को सीखना चाहिए हमें। क्योंकि अगर हम ए बी सी डी नहीं सीखेंगे तो कविता कैसे लिखेंगे, कविता तो बाद में आता है। लोग इच्छा करते हैं कृष्ण के साथ हम रास नृत्य करें, अरे रास नृत्य करने के पहले हमें माला जपना पड़ेगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। कृष्ण सिर्फ शुद्ध हुए, जिनके पास शुद्ध हृदय है उनके साथ ही नाचते हैं कृष्ण। तो हमें चित्त को शुद्ध करना पड़ेगा, पहले क्वालिफिकेशन चाहिए। अगर अचानक एक व्यक्ति IIT के गेट के ऊपर कूद कर अंदर चला गया, बोलता है कि हमको IIT में ज्वाइन करना है, अभी तक 12वीं कक्षा में फेल है, बोलेगी पहले तो पास करो उसके बाद IIT JEE लिखो, है ना, तो क्वालिफाई करो उसके बाद सीट मिलेगा तो इस IIT में आ पाओगे, है ना। ऐसे दीवार के ऊपर कूद कर अंदर नहीं जा पाएंगे हम। अभी राधा कुंड में प्रवेश करने का भी वो तरीका नहीं है। तो इस तरह योग्यता को हासिल करना चाहिए, लेकिन योग्यता को हम अपने आप हासिल नहीं कर पाएंगे, कृष्ण को सीधा पकड़ नहीं पाएंगे हम, कृष्ण को पकड़ में आते ही नहीं है किसी के बहुत आसानी से। लेकिन कृष्ण को प्राप्त करने के लिए तरीका इधर बताते हैं प्रभुपाद जी, गुरु के आदेशों को पालन करके हम चित्त को शुद्ध करके हम कृष्ण को प्राप्त करेंगे। जैसे कंपनी में हम ज्वाइन करते हैं, कोई तो बॉस है, हम नहीं बोलेंगे हम MD के पास सीधा काम करेंगे, नहीं तो CEO के साथ हमारा बातचीत होगा, नहीं CEO को मिल नहीं पाएंगे हम आसानी से, वो तो आता भी नहीं आसानी से। कृष्ण भी आते हैं ब्रह्मा के दिन में एक बार, 28th millennium of the 8th month तभी आते हैं। तो कोई बोलेगा हम कृष्ण के पास सीधा जाएंगे तो हम जा नहीं पाएंगे। जिस तरह हम कंपनी में किसी तो बॉस दिया है आपके ऊपर, उनको प्लीज करें, उनको कुछ करेंगे तो प्रमोशन मिलता है। इस तरह भक्ति में भी प्रमोशन ऐसे ही मिलता है, हम गुरु को अपनी संतुष्ट करके हम आगे बढ़ते हैं। और इस तरह हमारे सुनने का क्वालिटी अगर बढ़ रहा है कथा, इसका प्रूफ क्या है? जब हम सुनते हैं, बार बार सुनने की इच्छा होता है कृष्ण के बारे में, और सुनने की इच्छा होता है। जैसे कोई माता हो, बच्चे के शक्ल, बच्चे के चेहरा याद आता है, उसके आंखें याद आता है, उसके बोल याद आता है उनको। इस तरह भक्त को भी कृष्ण की कथा सुनने से कृष्ण के मधुरता, कृष्ण की सुंदरता, उनके दिव्य गुण जो हैं, ये सब उनके हृदय में स्फुरित होते हैं। और जब ये स्फुरित होते हैं, धीरे धीरे उनके लीलाएं, उनके जो कार्यकलाप जो है, लीला चेष्टाएं, वो स्फुरित होते हैं हृदय में। और अगर एक भक्त के हृदय में ये सब स्फुरित होते हैं, वो वैरी भावना से, दुश्मन भावना से, नहीं तो घृणा भावना से वो भक्त ऊपर उठ जाता है, किसी भी जीव को घृणा नहीं करता है। तितिक्षया करुणया मैत्र्या च अखिल जंतुषु समत्वेन च सर्वात्मा भगवान संप्रसीदति, ऐसे एक श्लोक है। वो तितिक्षा के साथ, करुणया मैत्र्या अखिल जंतुषु, सब जीवों को ऐसे वो देखता है, इस भावना से वो देखता है। और वो कोई भी उसको कोसने से, डांटने से, उसमें दोष देखने से उसको बुरा नहीं लगता है, उसको बहुत अच्छा लगता है कि हमको भी समझाने वाले कोई हैं, हमको अभी बताने के लिए कोई है ऐसे। अगर कोई उसकी प्रशंसा करे, उसको लगता है कि मच्छर काटने के बराबर है उसको, नहीं तो सर्प काटने के बराबर है, उसको अच्छा नहीं लगता है। खुद की प्रशंसा, अपने आप को नीच मानता है ऐसे व्यक्ति। और वो सब तरह के भय से मुक्त रहता है, वो स्वर्ग हो, नरक हो, अपवर्ग हो, कहीं भी वो जीने के लिए तैयार है। जो व्यक्ति उसको दुख देता है, उस व्यक्ति की सुख की प्रार्थना करता है। ऐसे एक श्लोक है जो दुर्वास मुनि ने बोला कि हे राजन, मैं तो तुमको मारने के लिए आया हूं, मैं एक बड़ा राक्षस को सृष्टि किया, लेकिन तुम मेरे बचाने के लिए, मुझे बचाने के लिए तुमने सुदर्शन को प्रार्थना किया, क्या तुम्हारा भावना है? तो इस तरह उसको देखकर दुर्वास मुनि का हृदय भी बदल गया, अम्बरीश को देखकर ऐसे। तो इस तरह भक्त, भक्त के अंदर भक्ति भावना कैसे जागृत होता है? जब हम मंदिर में आते हैं, भक्तों के चरित्र को देखते हैं, उनके अंदर भक्ति भावना को देखते हैं, तो इसको साधु संग बोलते हैं। ये श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया। अभी श्रद्धा का मतलब है थोड़ा बहुत श्रद्धा है लोगों को भगवान में पहले, लेकिन जब मंदिर में आते हैं प्रायोगिक रूप से वो देखते हैं कि भक्तों के अंदर चरित्रवान जीवन जीते हैं भक्त लोग, साथ साथ उनके अंदर अनेक दिव्य गुण प्रकट हो रहे हैं। तो जैसे 12वें अध्याय में भगवान बता रहे हैं अनेक गुणों के बारे में, तो देखकर लोगों को इच्छा होता है कि हम इन भक्तों से संग करें। तो संग करने से उनको भी नाम लेने की इच्छा होता है, तभी नाम का श्रुति होता है। अभी नाम का श्रुति होने से, तो जब ये दिव्य नाम हमारे कान के अंदर प्रवेश करके हृदय तक पहुँचता है, उधर और एक व्यक्ति सुन रहा है, कौन सुन रहा है उधर अंदर? हमको छोड़कर और एक व्यक्ति है, कौन? परमात्मा है। वो जब देखते हैं कि ध्यान से सुन रहा है, तो वो ही सफाई करते हैं हमारे हृदय को। तो हृदय को सफाई करके हमारे हृदय में और भी भक्ति भावना को जागृत करते हैं। पहले से जो भक्ति है, भक्ति का वर्धन होता है। जैसे एक बीज को बोने से वो उससे पौधा निकलता है, बाद में पेड़ बन जाता है, बाद में फल उग जाता है उसमें, इस तरह भक्ति भी बढ़ता जाता है, उसका वर्धन होता रहता है, भक्ति कभी घटता नहीं है। अगर आप एक पेड़ से एक डाली को काट कर लेके आओ, वो हरियाली तो रहेगा एक हफ्ते के लिए शायद, हाँ, उसके बाद सूख जाएगा, लेकिन भक्ति सूखने वाली चीज़ नहीं है। दिन के बाद, महीनों के बाद, साल के बाद वर्धन होने वाली चीज़ है। आनंद अम्बुदि वर्धन, एक व्यक्ति के अंदर नित्य नूतन है शब्द इस्तेमाल किया गया है भागवत में। नित्य नूतन का मतलब क्या है? भगवान के संबंध में जो न्यूज है, ये हमेशा फ्रेश होता है। न्यूज़पेपर में जो पढ़ते हैं ना, न्यूज का मतलब है न्यू, नया। नहीं तो न्यूज़पेपर में होते हैं नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ से हम लाया है, लेकिन लोग उसको पढ़कर रद्दी में डाल देते हैं उसको, लेकिन भागवत को कोई रद्दी में डालता नहीं है। हर दिन हम पढ़ते हैं भागवत को, क्योंकि ये फ्रेश न्यूज है, इसमें ऐसे ताजा है। लेकिन ताजा न्यूज़पेपर आने वाला न्यूज भी वो फीका पड़ जाता है बाद में। इसलिए हम ये भागवत के संदेश को ध्यान पूर्वक सुनना और अपने इंद्रियों से मन से भगवान की सेवा करना, नाम लेना और भगवान के विविध नवविधा भक्ति में जुड़कर हम सेवा करने से, इस तरह जो बताया गया है इधर, यदि ईश्वरे भगवती यथा यही रंजसा रति, रति जागृत हो जाएगा। तो लास्ट में एक छोटा विषय बोलकर हम प्रवचन का विराम देना चाहेंगे। भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं कि तीन श्रेणी के भक्ति है। एक भागवत में एक श्लोक है, धर्म स्वनिष्ठित पुंसाम विश्वक्से न कथा सुय न उत्पादय यदि रतिम श्रम ये वही केवलम। इस श्लोक में बताया गया है कि अगर हम कुछ कंपनी में काम करते हैं, घर में काम करती है माताएं, लड़के लोग कॉलेज में पढ़ते हैं, आपके जो भी प्रोफेशन हो आपका, लेकिन आपको उस प्रोफेशन के द्वारा आपके हृदय में रति जागृत होना चाहिए। कोई पूछेगा अगर हम कंपनी में काम करते हैं तो उस कंपनी का काम और भगवान की भक्ति में कुछ संबंध ही नहीं है, तो कंपनी के काम करने से भक्ति कैसे जागृत होगा, कोई पूछेगा, है ना। इसका मतलब क्या है, हम काम धंधा करते तो हैं हमारे पेट भरण के लिए, कुटुंब भरण के लिए, हमारे घर परिवार चलाने के लिए, लेकिन जिस व्यक्ति के अंदर एक श्रद्धा का बीज है हृदय में, वो जरूर बाकी टाइम जो मिलता है तब मंदिर में आएगा, एक दिव्य ग्रंथों को पढ़ेगा, भक्ति में जुड़ेगा, नाम वगैरह करेगा। लेकिन इस तरह करते करते रहने से कंपनी में रहते समय भी भगवान का याद आता है। इसको बोलते हैं कि इसको स्वनिष्ठ भक्त बोलते हैं। स्वनिष्ठ भक्त ऐसा है जिसको अपने कर्म को करते 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 करने के साथ साथ उसके भक्ति, उसके प्रोफेशनल लाइफ में भी भक्ति अंदर घुस जाता है। जैसे कंपनी में ऐसे फोन कर रहा है वो, आज शाम को कार्यक्रम आ जाओ, है ऐसे उधर से भी फोन कर रहा है किसी को, अभी माता है किचन में कुकिंग कर रही है, अनायास अपने आप मुँह से भगवान का नाम निकलता है। जैसे यशोदा मैया काम कर रही है ना, ये मंथन कर रही है माखन निकालने के लिए, अभी आंख भी बंद है उसका, लेकिन साथ साथ वो क्या कर रही है, गीत गा रही है कृष्ण के संबंध में, है ना। अभी वृंदावन में आप देखेंगे ये लोगों के लिए स्वाभाविक है, कीर्तन करते करते वो क्या करते हैं, काम भी कर लेते हैं, जैसे हाथ में काम मुंह में नाम होते हैं ना, ऐसे करते हैं। तो इस तरह हमारे प्रोफेशनल लाइफ में भी भगवान का नाम लेना, जैसे कोई बाथरूम में जाते हैं शेविंग करना है तो उनको लगता है कि थोड़ा प्रभुपाद जी का लेक्चर भी सुन ले, क्योंकि तो आधा घंटा चला जाता है शेविंग करते करते, ये क्या ऐसे चेहरे को देखने से देहात्म बुद्धि बढ़ता है। प्रभुपाद का लेक्चर सुनते सुनते शेविंग करो, हम अपने बारे में भूल जाते हैं, कृष्ण के बारे में स्मरण आता है ना। इस तरह उसको आइडिया कैसे मिलता है कि हमें प्रभुपाद जी का लेक्चर सुनना चाहिए, क्योंकि उसका मतलब है वो कहीं भी थोड़ा टाइम मिले वो तुरंत निकालता है। हमने एक वरिष्ठ भक्त को पूछा, मुझे टाइम नहीं मिलता, कैसे आप पढ़ते हैं, वो बोले मेरे साथ आओ मैं बताऊंगा। तो उनको देखा भाग दौड़ कर रहे थे मंदिर में सुबह से शाम तक, मैंने देखा आज तो पढ़ा ही नहीं। मैंने बोला प्रभु जी को, प्रभु जी सुबह से देख रहा हूँ आपको, आपको एक क्षण नहीं है बैठने के लिए। वो बोले कि तेरे को रात तक देखना चाहिए तुमको, अभी तक देखा ना, तुम देखते रहो पता चल जाएगा। तो वो तो शाम कुछ कार्यक्रम के लिए निकल रहे थे, एक घंटा ट्रैवल ट्रेन में, इतना भीड़ भाड़ था ट्रेन में, बहुत कठोर परिश्रम करके हम लोग घुस गए ट्रेन के अंदर। ट्रेन के अंदर जाने के बाद उन्होंने भागवत को निकाला, ऐसे निकाल कर ट्रेन में एक हाथ ऐसे पकड़ा, एक पांव उधर गए एक पांव उधर, ऐसे पकड़ा ऐसे, तो एक घंटा पढ़ लिया उन्होंने। वो बोले कि पूरा भागवत हमने ऐसे ही पढ़ा है। इसका मतलब क्या है, अगर रुचि है तो हम कुछ ना कुछ करके समय निकालेंगे। अगर आपके पास किसी ने एक अल्फांसा मैंगो दिया है, आप कहाँ रहते हैं दरवाजा बंद करके, कोई कटकटाते हैं दरवाजा, कोई कटकटा रहा है दरवाजा, तो आप क्या करेंगे, उसको कबाड़ में रखकर देखेंगे बाहर, ठीक है क्या चाहिए, चाहे न्यूज पेपर चाहिए देख लीजिए, तुरंत बंद करके वापस आएंगे, किधर रखा मैंगो अभी। इस तरह रुचि ऐसा चीज है कि आप समय निकालेंगे जरूर। कोई बोलता है समय नहीं है, उसका मतलब क्या है, आप समझ गए, वही बात है। इसलिए हमें समय निकालना चाहिए कथा सुनने के लिए, और कथा अगर रुचि लग रहा है तो हम कृष्ण को प्राप्त कर ही रहे हैं। हाँ, ऐसा नहीं कि जो गोलोक जाना धाम जाने के बाद ही हम प्राप्त करेंगे, इधर ही प्राप्त कर लेंगे कृष्ण को, क्योंकि चित्तम बता रही है निर्विश्य रूपम दृशा दुष्मताम अखिला तलाभम तय अच्छुता आविशति चित्तम। हे भगवान आप चित्त में प्रविष्ट हो गए, इसलिए मैं आपको बोल नहीं पा रही हूँ, ऐसे बोल रही है। जब भगवान चित्त में प्रवेश करते हैं कभी हम उनको बोलेंगे नहीं, और यह होता है गुरु की कृपा से, गुरु की मार्गदर्शन से। बहुत धन्यवाद, अभी समय हो गया 9 बज गया। मैं तो पुण्य कृष्ण प्रभु और बाकी सब इधर के भक्तों को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्या भगवान के दो शब्द बोलकर भगवान की गुणगान करने के लिए मुझे मौका दिया। नहीं, मैंने सुना कि 2005 में इधर आए थे रुक्मणी कृष्ण प्रभु, उसके बाद अभी लगभग 40 से ज़्यादा ब्रह्मचारी हुए हैं मंदिर में इधर, बड़ा कांग्रेगेशन भी है। तो प्रभुपाद जी भी बताते हैं कि एक श्रद्धालु भक्त एक खाली खाली स्थान में भी पहुंच जाए, अगर वो अच्छी तरह भक्ति करता है, क्योंकि उसके हृदय में कृष्ण है, सर्व आकर्षक कृष्ण उसके पास है, इसलिए वो अनेक भक्तों को तुरंत आकर्षित करते हैं। जैसे एक पेड़ में बहुत अच्छे अच्छे मीठे फल हो, अनेक पंछियाँ पक्षियाँ आ जाती हैं उधर, है ना, रंग बिरंगे पक्षियाँ कलरव करती हैं और मीठे फलों को खाते हैं। लेकिन अगर ऐसे पेड़ में ऐसे फल उगते जाए और भी, तो सब पंछियाँ सोचेंगे हम इस पेड़ को छोड़कर कहीं और क्यों जाए, हम इधर ही ठहर जाए, तो वो भी ठहर जाते हैं। कभी कभी बीच में बाहर निकल कर जाते हैं दूसरे पक्षियों को बुलाकर लाने के लिए, इस तरह पंचों का संख्या बढ़ जाता है उधर। इस तरह किसी भी मंदिर में अच्छी तरह भक्ति भावना बढ़ रहा है तो भक्तों की श्रद्धा, उनकी दृढ़ता, उनकी फोकस, इसके कारण ही भक्तों का संख्या बढ़ता है। और इधर जो होता है आपके सुबह का कार्यक्रम बहुत बढ़िया हो रहा है, भक्त लोग बहुत श्रद्धा के साथ नाम जप कर रहे हैं ध्यान से, और भगवान की आराधना बहुत अच्छा हो रहा है। ये दक्षिण भारत में ये फूल बहुत प्रसिद्ध है, मोगरा, जैस्मिन फ्लावर ना, ये सबसे बहुत सुगंधित फूल है। तो इसको देखने के बाद मुझे लगा कि हमारे पूना मंदिर में हम इतना फूल नहीं चढ़ाते हैं आर्डर के ऊपर, हमको भी चढ़ाना चाहिए। तो मैं जाकर हमारे पुजारी को बोलने वाला हूँ। मैं वो लोग मैंने सोचा कि वो बहुत कंजूसी करते हैं, फूल को इधर उधर रखते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा डालकर सजाना चाहिए, बहुत आल्टर बहुत सुंदर दिख रहा है। तो आप लोग इस तरह हम जितना प्रेम से भगवान को सजाते हैं, उनको मनाते हैं, उतना भगवान, क्योंकि प्रेम से बुलाने से कौन नहीं आएगा, भगवान जरूर आ ही जाएंगे, हमारे हृदय में प्रविष्ट हो जाएंगे और हम उनको स्मरण कर पाएंगे। और जब हम स्मरण करते हैं भगवान प्राप्त हो जाते हैं, हम बहुत ही आसक्तियों से वासनाओं से आसानी से हम ऊपर उठ जाएंगे। हे प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि ऐसे शुद्ध भक्ति को लोग प्राप्त करें और हम भी शुद्ध भक्ति की प्रचार प्रसार करें। श्रील प्रभुपाद की, मंत्रा श्रीमद भागवतम की, गौर भक्त वृंद की, कलयुग पावन हरिनाम संकीर्तन की। थैंक यू वेरी मच।